अभी जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्लीप मैनेजमेंट। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बहुत ही अनुभवी बीके ब्रदर अशोक गावा। आपका शॉर्ट परिचय जो मैं देना चाहूंगा, ही वॉज अ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड। बीके अशोक गावा इज ए ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही स्पेशलाइज इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स वाइल सर्विंग डी आई एफ एज ए टेक्निकल ऑफिसर। बॉर्न इन ए स्पिरिचुअल फैमिली इन 1947, ही ज्वाइन राजयोगा मेडिटेशन क्लासेज वेन ही वॉज सर्विंग एज पायलट ऑफिसर एट दिल्ली इन जनवरी 1972। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप मेडिटेशन सेंटर्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एट तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, डिमापुर एटसेट्रा वेन ही वॉज पोस्टेड एट ए एफ स्टेशन छाबुआ ड्यूरिंग मिड 70s। ही वॉज एडवेंचरस इन जुलाई 1977 फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अशोक गावा ड्रॉव इज जावा मोटर बाइक फ्रॉम ले टू चांगला एंड खारदुंगला द हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ द हाइस्ट रोड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दस मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ ओरिएंटेशन, पावर मेडिटेशन, टाइम स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट, मेडिटेशन, आर्ट ऑफ माइंड एटसेट्रा। ही इज ए विजिटिंग फैकल्टी टू BSF एकेडमी टेकनपुर, ISSERPF, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज SOP SCP कैप्सूल्स एट फील्ड फॉर्मेशन ऑफ आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी। ही ऑर्गेनाइज 2 days SOP कैप्सूल्स फॉर आर्मी ऑफिसर्स एट कारगिल एंड ले इन जुलाई 2005 ऑन इन्विटेशन फ्रॉम दी देन कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ML नायडू, PVSM, AVSM, YSM, हु इज नाउ द VCOAS। In July 2006, he arranged program on stress sleep management and mental empowerment at Air Force Station, Suratgarh. In October 06, SOP capsules were arranged at Headquarters Eastern Naval Command on invitation from our respected CNS, Admiral Suresh Mehta, PVSM, AVSM, ADC, then FOC and CENC. The education and meditation camps were organized for the troops of Assam Rifles in May and November 2007. At Coima. Presently he is serving as manager at the Academy for a Better World located in calm, clean and green hills of Mount Abu. He also looks after the communication facilities at the Academy and coordinates the national level program of security services wing RERF. The subject I have already read before you, quality of life and sleep management. Life mein char shabd hai. अगर पहला और आखिरी शब्द काट दें तो बीच में सिर्फ इफ रह जाती है, हमारी बीच की जिंदगी इफ से चलती है, और एफ काट दें तो वर्ड रह जाते हैं लाई, पर लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ क्या है? इफ यू डू नॉट सर्व यू इंजर अदर्स, इफ यू डू यू इंजर योर सेल्फ। इग्नोरेंस ऑफ द डिलेमा इज द डेथ ऑफ द सोल, फ्रीडम फ्रॉम दिस डिलेमा इज इटर्नल लाइफ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ब्रदर बीके अशोक गावा जी से कि इस विषय पर अपने विचार।
ओम शांति। आज इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सभी अच्छी प्रकार से ठहरे हुए हैं? आर यू ऑल कंफर्टेबल इन योर प्लेसेस, हैविंग ए नाइस टाइम? गुड। हम लोग विविध विषयों पर यहां लेक्चर सुन रहे हैं। अभी आपने एंगर मैनेजमेंट पर सुना, पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सुना, और अब एक नया विषय आ रहा है स्लीप मैनेजमेंट का। आप में से कितने लोग स्लीप मैनेजमेंट के बारे में कभी सुन चुके हैं जीवन में? हाथ उठाएं। एक भी नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आत्मा के बारे में कहा जाता है कि रूह और जिस्म का भी ये अजीब है दास्तान, जिंदगी भर साथ रहे और कभी रूबरू ना हुए। आत्मा और शरीर जिंदगी भर साथ रहते हैं मगर कभी रूबरू नहीं होते। उसके लिए खास आपको एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड में आना पड़ा ताकि आप खुद अपने खुद के शरीर से रूबरू हो सकें, उससे डिटैच हो सकें और समझ सकें उसका प्रभाव। अगर डिटैच होकर हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो उस याद के बल से हमारे जिस्म पर, हमारे शरीर पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम लोग रोज सोते हैं, डेली विदाउट फेल, फिर भी नींद के बारे में बहुत कम जानते हैं। अजीब सा लगता है। व्हाट इज द नेचुरल स्ट्रेस बस्टर गिवन टू अस बाय गॉड? भगवान ने हमें एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर दिया हुआ है। हम लोग रोज काम करते हैं, शारीरिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है, स्ट्रेस होती है, तनाव होता है और रोज सुबह हम फिर फ्रेश होकर नया जीवन शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने क्या स्ट्रेस बस्टर दिया हमें? स्लीप, एज सिंपल एज दैट। कि दिन भर थक जाते हैं और कोई ना कोई कारण से तनाव भी होता ही है, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं। एक तो कुदरती हमें तनाव मुक्त होने का साधन भगवान ने दिया हुआ है और एक आपको यहां नई बात पढ़ाई जा रही है कि तनाव मुक्ति के लिए राजयोग एक बहुत अच्छा साधन है। ये साधना ऐसी है जो हमें एक सहज साधन प्रदान कर देती है, जब चाहें, जहां चाहें, जिस समय चाहें, जितना समय चाहें हम राजयोग कर सकते हैं और उसका तुरंत प्रभाव देख सकते हैं कि हमें तनाव मुक्ति का आभास हो। कभी बहनें आपको यहां से योग कंडक्ट करके जब मेडिटेशन कराती हैं तो उनके चेहरे पर क्या भाव जागृत होते हैं? कुछ फर्क पड़ता है जब योग कराती है या भाषण दे रही होती है? पहले दिन जब आपका उद्घाटन समारोह चल रहा था तो हमारी डायरेक्टर डॉक्टर निमला दीदी ने कुछ समय योग के बारे में बताकर फिर योग कराया था, याद है आप लोगों को? किस पर? लोगों पर थोड़ा उधर किसका है? वकील साहब को तकलीफ मत दो, किसी भाई को। यस यस, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीएडजस्ट हो गया। इस पर अभी आप लाइट मत कीजिए, जब जरूरत होगी तब करना। हम ठीक है, चल ओके, थैंक यू। देखिए कितना ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं आप स्टेज को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू फॉर टेलिंग दी पीपल टू सेट इट ऑल राइट। तो हम चर्चा कर रहे थे कि योग के द्वारा जब चाहें, जितना समय चाहें हम एक अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं और उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर पड़ता है। जैसे दीदी ने जब योग कराना शुरू किया तो कैसा उसका चेहरा दिखाई दे रहा था? चेहरे पर क्या होता है? एक ग्लो आ जाता है, एक आनंद की अनुभूति, रूहानियत का भाव दिखाई देने लगता है। और अगर चेहरे पर इंसान के ग्लो हो, रूहानियत की अनुभूति हो रही हो, उसे आनंद का आभास हो रहा हो तो तनाव हो सकता है, या अंधकार रह सकता है या रोशनी रह सकती है, या तनाव रह सकता है या आनंद रह सकता है, दोनों में से दोनों साथ साथ नहीं होते। जैसे जब जगे हुए होते हैं ऑफिस में, कोई ऐसा इरिटेटिव सब्जेक्ट आ जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कोई मुवक्कल ही ऐसा आ जाता है सिर खाने वाला कभी कभी, और एक स्ट्रेस ही होने लगती है और रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं बड़े प्यार से, ना कोई मुवक्कल याद आता है, ना कोई तनाव याद आता है, एक आनंद किसी अनुभूति होती है। इन सब चीजों को आजकल वैज्ञानिक मीटर्स के द्वारा पढ़ा भी जा सकता है। इट कैन बी रेड आउट इन टर्म्स ऑफ ए मीटर। एक छोटा सा मैं खिलौना जैसा मीटर आपके सामने लाया हूं। हमारी श्रद्धा बहन जब ऊपर चढ़ रही थी, कहती भाई लोगों को दिखाने से पहले मुझे दिखाओ ना कि मेरे मन की स्थिति क्या है, मैं कितने तनाव में हूं या कितनी तनाव से मुक्त हूं। मैंने कहा बहन जी आपको दिखाने के लिए बहुत टाइम है, पहले मैं सब भाई बहनों को एक बार अवगत करा दूं, बाद में अपन लोग आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे। इसमें एक मीटर है, ये इट्स ए वेरी ऑर्डिनरी मीटर, इट्स साइंटिफिकली नोन एज ए स्किन मीटर विच इज यूज फॉर ईईजी मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ मूवमेंट्स मेजरमेंट्स कहा जाता है। ईसीजी आप सब समझते हैं? ईसीजी क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर लगाओ छाती में, और कंप्यूटर पर जो रीडिंग आ जाती है उसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और अगर ऐसे एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया जाए और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया जाए तो ईजी आ जाता है। स्ट्रेस कहां होती है, इधर या इधर? इधर होती है। ओके, उसको नापना हो अगर आपको स्ट्रेस की बजाय, हम लोग ब्रह्मा कुमारी में हर चीज को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, इसका नाम हैप्पीनेस मीटर है, स्ट्रेस मीटर नहीं है। और हैप्पीनेस मीटर इसलिए है कि इसकी रीडिंग जितनी कम होगी उतना ही आपको खुशी ज्यादा महसूस होगी। इसका मतलब है जितनी आपकी स्ट्रेस कम होती जाती है स्किन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, और स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो जो रीडिंग्स आती हैं बहुत लो ऑर्डर्स की आती हैं और वो अधिक से अधिक खुशी का एहसास कराती हैं। इसका मतलब है जितना आदमी अधिक खुश होता है उतनी इसकी स्किन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो ये मीटर कम पड़ने लगता है, यानी जितनी खुशी बढ़ जाए उतना ये मीटर लो रीडिंग देना शुरू कर देता है। अगर 20 के अंदर आपको इसमें रीडिंग पढ़ने को मिले, इस समय 0-0 है, मैं इसके दो इलेक्ट्रोड्स को एक यहां और एक यहां ऐसे पकड़ लूं अगर, तो इसके बीच में जो रीडिंग आती है उसको स्किन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये रीडिंग अगर 20 के अंदर है तो आप बहुत आनंदमय स्थिति में हैं। 20 और 50 के अंदर है, जैसे कि अभी ये 20 के आसपास है, मतलब इट इज ए मार्जिन, आनंदमय स्थिति है लेकिन बहुत आनंदमय गहन योग की अवस्था नहीं है। अगर 50 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं, और अगर ये 80 से ऊपर बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और अगर ये 100 से बढ़ जाए तो आगरा जाना पड़ता है, ताजमहल देखने के लिए नहीं। एनी हाउ, ठीक इसी प्रकार से अगर नींद रात को अच्छी आती है और सुबह हम फ्रेश उठते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और अगर रात को करवटें बदलते रहे हों तो सुबह का मूड भी भारी होता है। तो आज हम इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, इसलिए इस विषय का नाम रखा गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट एंड मेंटल एम्पावरमेंट। जितनी मेंटल एम्पावरमेंट होगी, इसका मतलब है जितने आप खुश होंगे उतनी आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन समुचित होनी चाहिए। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर 80 और 120 के बीच में है तो बहुत अच्छा, कम हो जाए तो मुसीबत और बढ़ जाए तो मुसीबत। थोड़ा सा कम होना तो चलता है लेकिन ज्यादा होना नहीं चलता है। इसी तरह हम आज देखेंगे कि थोड़ा सा कम होने से क्या होता है और ज्यादा होने से क्या होता है नींद। पहली बात हम शुरू करेंगे, नींद होती क्या है और हम क्यों सोते हैं। एनीवन ऑफ यू फ्रॉम द फर्स्ट लाइनर्स? जी, माइंड को रेस्ट देने के लिए, शरीर को मेन माइंड ही है। अगर हम आपको भेज दें भी एक मैराथन रेस के ऊपर, भाई 21 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, वैसे 42 किलोमीटर की होती है, तो उसके बाद कैसा महसूस होगा? माइंड तो बिल्कुल नहीं थका होगा, जब दौड़ता आदमी उसका मन कभी नहीं थकता है। लेकिन आप समझते हो कितना आपको रेस्ट चाहिए होगा दोबारा फिर खड़े होकर दौड़ने के लिए। मैराथन रेस की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी रेस की बात नहीं कर रहा। कोई भी बता सकता है, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव से मुक्त होने के लिए नींद की जरूरत होती है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात अभी आप सुनेंगे, आप कितने भी थके हुए हों भौतिक रूप से, आपको सिर्फ इंटरमीटेंट आधा घंटा रेस्ट की आवश्यकता होती है। मैंने इसलिए उस बच्चे को मैराथन की बात शुरू कर दी कि भले मैराथन रेस करके भी आया हो अगर खिलाड़ी, उसको आधा घंटे का आराम करा दीजिए, फिर वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मानसिक रेस्ट के लिए यस, अ लिटिल मोर, देयर इज अ नीड ऑफ स्लीप। सो वी विल गो इनटू द वेरियस कॉजेस, फर्स्ट वी विल डिफाइन एंड देन वी विल गो इनटू द व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्लीप, देन वी विल गो इनटू द एस्पेक्ट हाउ मच स्लीप डू वी नीड, कितना घंटा सोना चाहिए हमको। पीछे वाले कुछ बोलेंगे, वो बहन जी पीछे वाली बोले, हाँ आप खड़े हो जाइए बहन जी, जिन्होंने हाँ ग्रीन शर्ट में, बोलिए कितना घंटे सोना चाहिए? 6 से 7 सोना चाहिए। ओके, कितना सोना चाहिए? 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे या सोते 5 घंटे? हाँ सोते 5 घंटे। कितना सोना चाहिए? वो कह रहे जी बच्चों को 10, युवाओं को 8, और जो बूढ़े हो जाए उनको 6 ही काफी है। 6 महीने का बच्चा जो होता है ना, या 3 महीने का कितना सोता मालूम है, किसी माता जी को पूछना, कम से कम 22 घंटा सोता है। जब आप भी छोटे थे ना, सिर्फ दूध पीने के लिए जागता, बाकी सब काम उसकी मम्मी करती। ये स्लीप मैनेजमेंट का लेक्चर छोटे बच्चों के लिए वैलिड नहीं है, मैं पहले से कह दूं। बिटवीन 7 ईयर्स टू 70 ईयर्स वी विल टॉक अबाउट द स्लीप साइकिल्स। नंबर 2, अब इन्होंने कहा युवाओं को 8 घंटे सोना चाहिए। कौन कौन युवा है, आप अपने को युवा समझते हैं? व्हाट इज योर एज? खड़े जाइए। 30 साल। नेचुरली यू आर एब्सोल्युटली इन प्राइम ऑफ यूथ। व्हाट टाइम डू यू स्लीप? कितने बजे आप सोते हैं? 9:30 बजे सो जाते हैं। वकालत करते हैं फिर भी इतनी जल्दी सो जाते हैं? भाग्यशाली हो। पुराने वकील सोचते होंगे पता नहीं। ठीक है, उठते कितने बजे हैं? 10 बजे। 9:30 बजे सो जाएं? 5 बजे। मतलब आपने कन्विक्शन पाली कि मुझे 8 घंटा सोना है। मैं कुछ नई बात बताऊंगा आज। तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बड़प्पन बढ़ जाएगा। आप समुचित निद्रा में जब सोएंगे तब आपको थोड़ा और अधिक काम करने का वक्त मिल जाएगा। और कोई, आप कितने बजे सोते हैं? सच बोलना है, बिल्कुल घबराना नहीं, कोई बात नहीं। अराउंड 10:30 यू स्लीप। व्हाट टाइम डू यू गेट अप? 5 o'clock। ये 10:30 बजे सो के 5 घंटे, 5 बजे उठ जाते हैं, मतलब करीब 6.5 घंटा। और कोई? एनीवन? यस, अच्छा। 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 6 घंटे सो जाते हैं। मतलब उन्होंने एवरेज 6.5 घंटे लोग सोते हैं। आप कहीं भी किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, 5 से लेके 6.5 घंटे के बीच में सोता है वो। बोलेंगे सब 6 से 8 घंटा सोना चाहिए क्योंकि डॉक्टरों ने बताया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो लेटेस्ट रिसर्च की है वो मैं आज बताऊंगा आपको। द थियोरी ऑफ 6 to 8 आवर स्लीप इज नाउ बिकम ए मिथ। महाभारत जैसे होता है ना, अर्जुन ने ऐसा कहा, भीम ने ये रेस्पॉन्ड किया, दुर्योधन को गुस्सा आ गया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो इतिहास की बातें 6 से 8 घंटे वाली हो गई हैं। वर्तमान समय ये 8 घंटे वाली थ्योरी कितनी वैलिड है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शायद वकील साहब को अपने आप को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा और अधिक एफिशिएंसी लाइफ की बढ़ाने का। सो लेट्स कम टू इट। व्हाई डू वी स्लीप? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्लीप? वी आर कमिंग टू दैट। 3 प्रकार की मनुष्य की चेतनता के रूप होते हैं। अब तो आपने आत्मा की बात सुन ली है, मन बुद्धि संस्कार की बात सुन ली, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो। मैं साधारण बातें कर रहा हूं। इफ वी व्यू दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनता के 3 अगर स्वरूप मानते हैं, जिसमें पहली जागृत अवस्था है जैसा हम सब बैठे हैं आई सपोज, दूसरी स्वप्न की अवस्था और तीसरी निद्रा की अवस्था। ऐसी होती है 3? जगे हुए होते हैं, सोए होते हैं या स्वप्न ले रहे होते हैं, और कोई चौथी स्टेट तो नहीं होती। तो निद्रा वह अवचेतन अचेतन अवस्था है जिसमें से व्यक्ति को जागृत किया जा सकता है। ऐसे ही होता है, जिसमें से हम जगा सकते हैं। निद्रा के समय मस्तिष्क पर बाहर की वस्तुओं की बजाय आंतरिक चिंतन का प्रभाव अधिक पड़ता है। जब आप सोए हुए होते हैं तो बाहर कुछ भी हो रहा हो उसका ज्यादा नहीं पता लगता, खासतौर पर अगर आप गहरी नींद में सोए हुए तो वो एक साउथ इंडिया के टोन में लोग जोक सुनाते हैं ना, हमारा हिम्मत देखो जी, हमें सोया हुआ था, चोर आया, हमें सोया रहा, हमारा तकिया के नीचे से चोर ने चाबी निकाला जी, हमारा हिम्मत देखो जी, हमें सोया रहा, चाबी लेकर अलमारी खोला जी, अभी इतनी जल्दी क्यों खुश हो गए हैं, पूरी तो सुन लीजिए। चाबी लेकर चोर ने अलमारी खोला जी, हमारा हिम्मत देखो जी, हमें सोया रहा, सामान निकाला चोर ने, चाबी हमारा तकिया के नीचे रखा जी, हमारा हिम्मत देखो जी, हम सोया रहा, चोर चला गया, हमारा हिम्मत देखो जी, हम सोया रहा। कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है ना कि ऐसा बेवकूफ आदमी है, चोर आया, चाबी उठाई उसने तकिए के नीचे से, सामान निकाला, चाबी दोबारा रखी, अरे तभी उसका हाथ पकड़ लेता भाई। लेकिन आप सबको हैरत होगी कि जब हम सोते हैं, जब ये कहा जा रहा ना कि बाहर की वस्तुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, तो कुछ समय ऐसा नींद का होता है जब सचमुच ये सब हो जाए और आप सोए रहें, तभी माना जाएगा कि आप सचमुच गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। और अगर हम गहरी निद्रा में नहीं जाते हैं कुछ मिनट्स के लिए, तो हम सुबह फ्रेश नहीं हो सकते जैसा कि हम होना चाहते हैं। अब कैसा लग रहा है जो थोड़ा चिंतन शुरू हो गया सबका लेकिन नॉर्मली ऐसी अवस्था होती है कि आप बड़े सहज रूप से कोई आसपास गुजर रहा हो तो आवाज सुन के भी आप जग जाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। मैं वो वैज्ञानिक आधार से आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। कमिंग टू दिस कि निद्रा के समय मस्तिष्क पर बाहर की वस्तुओं की बजाय आंतरिक चिंतन का प्रभाव अधिक पड़ता है, और ठीक उसी समय जब चोर आया उसको नहीं पता लगा कोई उसको बड़ा भयंकर सपना आ रहा होता या उसको सपने में अगर चोर दिखाई देता तो फट से उठ के बैठ जाता था, ऐसा हो जाता है, यानी आंतरिक चिंतन का अधिक प्रभाव पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज निद्रा क्या है, ये तो आपने भी सुना। इसके बाद है हम, मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको कटिंग दिखा रहा हूं, व्हाई डू वी स्लीप, इट इज नॉट जस्ट फॉर दैट रेस्ट, जैसा कि आपने कहा कि इस रेस्ट के लिए सिर्फ होती है। न्यू फाइंडिंग सजेस्ट दैट स्लीप प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फ्लैगिंग एंड स्टोरिंग इंपॉर्टेंट मेमोरीज। नीचे लिखा हुआ है, सम न्यूरोसाइंटिस्ट से दैट एटलीस्ट वन वाइटल फंक्शन ऑफ स्लीप इज टाइड टू लर्निंग एंड मेमोरी, यानी नींद जो है वो आपके सीखने से और आपकी स्मृति से संबंधित है। अब रेस्ट की बात से हम थोड़ा हटते जा रहे हैं और आगे आगे देखिए क्या क्या खेल है। व्हाई डू वी स्लीप, अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसा रिजल्ट निकाला है कि शारीरिक थकान दूर करने के लिए निद्रा की आवश्यकता नहीं होती। कैसा लग रहा है? यू जस्ट नीड इंटरमीडिएट रेस्ट फॉर हाफ एन आवर इफ यू वॉन्ट टू टेक फिजिकल रेस्ट। आधा आधा घंटा ब्रेक ब्रेक में थोड़ा आराम कर लिया जाए वो किसी प्रकार के भी फिजिकल टॉर्चर को समाप्त कर देता है। इज इट टू रिफ्रेश द बॉडी? नॉट रियली। रिसर्चर्स हैव येट टू फाइंड आउट एनी वाइटल बायोलॉजिकल फंक्शन दैट स्लीप रेस्टोर्स। एज फार एज एनीवन कैन टेल, मसल्स डोंट नीड स्लीप, जस्ट इंटरमीडिएट पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, अब अलग अलग थ्योरीज हैं कि क्यों नींद आवश्यक है। निद्रा द्वारा मस्तिष्क दिन भर में प्राप्त हुई सूचनाओं का संग्रहण करता है, वही टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लिखा हुआ था। निद्रा के समय मस्तिष्क को अधिक मात्रा में शुद्ध रक्त मिलता है, ब्रेन को ज्यादा। निद्रा विविध कलाएं सीखने में मदद करती है। अब हम ये जो मदद करती है लिखा हुआ है ना, यही चीज उसने पहले कहा था कि निद्रा जो है वो मदद करती है नई कलाओं को सीखने में, लेकिन बहुत विशेष बात यह है जो फाइनल थ्योरी एक्सेप्ट की गई स्लीप के बारे में, निद्रा मस्तिष्क को इस तरह मदद करती है कि नई कला सीखते समय पुरानी कला विस्मृत ना हो जाए, इसके लिए नींद आवश्यक है। मतलब यह है कि एक पायलट आए, अपना हवाई जहाज उठाया, टेक ऑफ किया, सॉर्टी करके आया, यानी उसने ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए बॉस के साथ बैठा, चक्कर लगा के आ गया, उसने सीख लिया, फिर उसके बॉस ने कहा चलो अब सिंगल सॉर्टी करके आओ, वो एक सिंगल जाके फ्लाइंग करके आ गया, और जैसे नीचे उतरा उसको स्कूटर चलाना भूल गया। स्कूटर पे पहुंचा तो देख रहा है भाई किधर से स्टार्ट किया जाए, तो घर पहुंचेगा? अगर सचमुच बहुत दिन ना सो पाए इंसान तो ऐसे भी कर्तव्य करना शुरू कर देता कि नई चीज सीखेगा पुरानी भूल जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम समुचित निद्रा करें। जीवन भी क्या है, रोज नई चीजें सीखने के लिए आप सब यहां क्यों आए? आपको किसी ने कहा कि वहां एक नई राज्यों की कला सिखाई जाएगी जो आपकी जिंदगी को खुशहाल कर देगी? वैसे भी जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए नई नई चीजें सीखने की इच्छा होती है बिना पुरानी भूले हुए, तो निद्रा वो काम करती है। हैं सब नई नई बातें कुछ कुछ। अब एक और नई बात, आपका नाम क्या है जी? उम्मीद कुंभित। ओके, थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज हो सकती है, पढ़िए ध्यान से। 1 मिलियन लोगों पर रिसर्च की गई 1980s में, एंड द रिजल्ट फाउंड वाज दैट डोज हु स्लेप्ट मोर देन 7.5 आवर्स ए नाइट टेंडेड टू डाई अ लिटिल सूनर देन देयर मोर स्लीप डिप्राइव्ड काउंटरपार्ट्स। इसका भावार्थ समझते हैं, ज्यादा सोइए जल्दी मरिए। कैसा लग रहा है? नई नई बातें लग रही ना, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च खुद से मैं सिर्फ वही सुना रहा हूं, इसलिए अगर किसी को 7.5 घंटे या उससे ज्यादा सोने की आदत है तो कृपा कर उसका त्याग करने के बारे में सोचिए, नहीं तो बहुत जल्दी बुलावा आ जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी इसी डरने कोई बात नहीं है कि एक आध आदमी ने कहा कि 8 घंटे मैं सोता हूं, सोना चाहिए तो सब लोग कहते हैं, ऐसे भी अखबारों में छपता रहता है कि अगर जो 8 घंटे नहीं सोएगा उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें भी छपती रहती हैं। लेकिन सोचे सोते हम सचमुच ही 6-7 घंटे 6 घंटे करीब सोते हैं। एक भाई तो 5 घंटे ही बोला, हो सकता है उस अकेले आदमी की बात आप सबसे ज्यादा बजनी हो, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि नई कलाओं को सीखने के लिए धीमी तरंगों वाली निद्रा की आवश्यकता होती है। ये इजी चार्ट जैसे दिखाया ना, वो छोटा सा मीटर लगा हुआ है, ऐसे ही छोटा सा मीटर मैंने आपको दिखाया। इसकी जो रीडिंग्स हैं वो बताती हैं कि अगर तरंगें धीमी हो, माना ये अगर स्लो वेव्स दिखा रहा है, स्लो रीडिंग्स दिखा रहा है, तो आपको सीखने की कला जो है वो आपकी विकसित होती है, आपको खुशी भी मिलती है और आपकी नई कला सीखने का विकास भी होता है। अब हम ये सोचें, देखें कि हमें कितना सोना चाहिए और हम सोते किस तरह से और कितना सोते हैं। ये फिर ये दिखाया गया ईजी चार्ट जो होते हैं, उसमें चार प्रकार की वेवफॉर्म्स होती हैं। जैसे लो वेव पैटर्न्स में भी फास्ट वेव्स होती हैं जिसे हम बीटा वेव्स कहते हैं, जो जगे हुए हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। बीटा वेव्स का मतलब है फास्ट मूविंग वेव्स विच आर मोर देन 13 हर्ट्ज़ पर सेकेंड। अल्फा वेव्स होती हैं उनसे थोड़ी स्लो। जब हम नींद प्रारंभ करते हैं, आपको नींद आ रही है, आपने एक उबासी ली और सो गए, उस समय जो वेव्स आती हैं उन्हें अल्फा वेव्स कहा जाता है विच आर 8 to 12 हर्ट्ज़। ये बेस्ट वेव्स होती हैं। अगर आप जागृत अवस्था में इन वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अल्फा वेव में काम कर सकें, वैसे सब बीटा वेव में ही काम करते हैं, 13 से लेकर 20 हर्ट्ज़ तक नॉर्मली आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जब आप काम करते हैं, अगर आपको तनाव नहीं है तो। अगर तनाव है तो आप 30 हर्ट्ज़ से ऊपर चले जाएंगे, और जैसे मैंने कहा अगर 50 हर्ट्ज़ से ऊपर चले जाएं, यानी उसकी रीडिंग अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो आगरा का बुलावा भी आ सकता है। लेकिन आमतौर पर व्यक्ति 13 से 30 हर्ट्ज़ के बीच में ही काम करता है थोड़े स्ट्रेस के साथ। और अगर अल्फा वेव में काम करने की उसको क्षमता आ जाए, और इसमें यह थकता है, ये जो कहते हैं ना थकावट होती है इसलिए नींद चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं बीटा वेव में, ये जो ब्रेन वेव्स है हाई स्पीड की चलती रहे तो आपको थकावट होती है, और दोनों ब्रेन पैटर्न्स ये 20 हर्ट्ज़ चल रहा है ये 25 पे चल रहा है, तो वो और भी तनाव का इंडिकेशन होता है। और अगर डिफरेंस बढ़ता जाए और स्पीड भी बढ़ती जाए तो फिर मेडिकल एड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नॉर्मल अगर आप 18-20 हर्ट्ज़ पे चल रहे हैं तो आपको तनाव की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 8 और 12 हर्ट्ज़ के बीच में, जो कि नॉर्मली आंखें बंद करके ही व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकता है सिवाय राजयोगियों के, तो वो मोस्ट एफिशिएंट वे में काम कर सकता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद नींद की स्टेज होती है जिसे हम थीटा वेव्स कहते हैं, थोड़ी और स्लो, जो कि 4 to 8 हर्ट्ज़ की हैं। और डीप स्लीप डेल्टा वेव होती है जो थोड़ी देर के लिए आती है और बहुत स्लो होती है, उसे 0.5 to 3.5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो 0.5 to 3.5 हर्ट्ज़ मैं डेल्टा वेव की बात कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव पैटर्न है, क्योंकि इसी में हमको सारे वो बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। और ये वही पैटर्न है जिसे मैं कहते हैं कि हमारा हिम्मत देखो जी, यानी सचमुच अगर आप डेल्टा वेव में हैं तो आपके आसपास कोई भी मूवमेंट हो उसका आपको आभास नहीं होता। एंड इट इज असेंशियल बिकॉज इट इज ओनली दिस पार्ट ऑफ द स्लीप विच गिव्स यू द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। नाउ कमिंग फ्रॉम बीटा टू डेल्टा वेव एंड बैक, इसे हम एक साइकिल कहते हैं, स्लीप साइकिल। यानी हम जगी हुई अवस्था से गहरी नींद की अवस्था में गए और वापस आ गए, कितनी देर लगनी चाहिए? जगे हुए हैं, गहरी नींद में गए, ऐसे हल्का हल्का आंखें झुपकी ले ली, उसको गहरी नींद नहीं कहा जाता, उसको तो पता लग जाएगा, पड़ोस वाला जगा देगा आपको। लेकिन गहरी नींद में जाने का मतलब है पड़ोसी कुछ भी करता रहे, आप अपना आराम से सोए रहेंगे, फिर आप जगे वापस, तो कितनी देर लगनी चाहिए जी? छह घंटे तो कम से कम लगने चाहिए, महीनों की बात ना भी करें तो। सचमुच कितना टाइम लगता है आप हैरान होंगे सुनकर, इट ओनली टेक्स 90 to 120 मिनट्स। मतलब कोई भी आदमी गहरी नींद में सो के वापस आने में 1.5-2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेता। सबसे बड़ा स्लीप साइकिल कछुए का होता है। कछुआ कितने साल जीता है? 350-350 साल तक। सबसे स्लो सांस लेता है कछुआ इसलिए, और अपनी कर्मजीवियों को समेट के रखता है। लेकिन हम तो एक्टिव फील्ड वर्कर्स हैं, हम कोई पानी में जाके कछुए की तरह पड़े तो नहीं रह सकते। और आत्मा शरीर में प्रवेश ही करती है, अपना कुछ गुण दिखाने के लिए। इसलिए एक्टिविटी हमारा जीवन है, सोना हमारा जीवन नहीं। इसलिए कुदरत ने आपको सिर्फ 1.5-2 घंटा सोने की ही ताकत दी है। मनुष्य को कोई भी जीव हो उसका सबका स्लीप साइकिल ऐसे ही होता है, एनी एट ए टाइम ओनली 90 to 120 मिनट्स, एवरेज वी स्लीप 100 मिनट्स एट ए टाइम, उसके बाद दूसरा स्लीप साइकिल शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि रात को आप 10 बजे सोए, 12 बजे से पहले एक बार आपकी आंख खुल सकती है, अगर कोई जरा सा भी आकर हल्का सा भी इसे टक्करेगा तो आप एकदम उठ के बैठ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप जगे होते। फिर आप सो जाते हैं, फिर 2 बजे करीब 3.5 घंटे के बाद फिर वही हालत में आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता ही है कि 1.5 बजे हमारी नींद खुलती है, हमको बाथरूम की इच्छा होती है, हम जाते हैं, वापस आते हैं आराम से, घड़ी पे देखते हैं अभी तो भैया 1:45 बजे, सो जाओ। नहीं तो आप अपने आप को जरा बाहर थोड़ा वॉक करके देखिए, आप इतने फ्रेश फील करेंगे 3.5 घंटे के बाद कि आप 8 घंटा काम कर सकते हैं। अपना कोई भी केस निकाल के, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हो उस समय स्टडी कीजिए, तो बड़ी फास्ट गति से आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फीलिंग होती है भाई 2 बजे उठ के क्या करना है, फिर सो गए, फिर 4 बजे उठे, 5-6 घंटा आपने सो लिया डिपेंडिंग अपॉन योर स्लीप साइकिल, फिर तो आप सोचते सो लिया ना यार उठ जाए। कभी कभी ये भी होता है, अरे थोड़ा और सो लो, फिर और 1.5-2 घंटा सो जाते। कभी इतवार का दिन होता है तो आज तो कोई काम नहीं है और सो लो। मान लिया मैं 10-12 घंटे आपको सोने की छुट्टी दे दूं कि आज तो फ्री हैं आप 12-15 घंटे सो जाइए, क्या होगा 12 घंटे के बाद, कोई बता सकता है? आप ये अगर 12 घंटे सो जाओ फिर कैसे उठेंगे? बहुत आलस से भरा होगा। सोए थे फ्रेश होने के लिए, 12 घंटे सो के उठे तो आलस से भरा होता है, बिल्कुल नेचुरल बात है। इट मीन्स देयर इज एन ऑप्टिमम स्लीप, मोर देन दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। नाउ लेट्स गो टू दैट। एक व्यक्ति सोया मैं आपको दिखाता हूं और उसके स्लीप साइकिल्स आपको दिखाता हूं कैसे कैसे चलते हैं। ये आदमी सोया हुआ दिख रहा है, निद्रा के समय ली गई ईजी चार्ट द्वारा व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण है इसमें, और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो वे पैटर्न देख रहे हैं, पहले वाले में नीचे का काला पोर्शन उसे डेल्टा वेव्स कहते हैं, काफी ज्यादा दिख रहा है, दूसरे साइकिल में उससे थोड़ा कम हो गया, तीसरे साइकिल में नीचे काला चला गया, थोड़ा ऊपर का हल्का सा काला रह गया, चौथे और पांचवें साइकिल में नीचे का जो काला पोर्शन है वो है ही नहीं। इसका मतलब डेल्टा वेव्स होती ही नहीं है चौथे साइकिल के बाद, ना चौथे में ना चौथे के बाद। तो जो चीज आपको रिफ्रेश करती है वो केवल 3 साइकिल्स तक ही होती है। दिस मीन्स वी शुड स्लीप ओनली फॉर 3 साइकिल्स, 100 × 3 कितना हो गया? 300 मिनट। कितने घंटे हो गए? जिसका 1.5 घंटे का 100 मिनट का स्लीप साइकिल हो, मेजोरिटी ऐसा ही होता है। वो जो एक व्यक्ति बोला था ना 5 घंटे सोता हूं, बेस्ट आंसर है। मैं आपको जो सुना रहा हूं अपने जीवन में करने के बाद, अनुभवों के बाद ही मात्र सुनाऊंगा, जो मुझे जीवन में अनुभव नहीं मैं आपको कभी सुनाता नहीं। दिस इज माय वे ऑफ लाइफ। माय नॉर्मल रूटीन इज आई स्लीप एट 11:10 एंड आई वेक अप एट 4 o'clock, 4:05 पहले या 5 मिनट बाद में उठता हूं। मैंने कभी किसी अलार्म पर, रिकॉर्ड पर कभी उठ के नहीं देखा। तो नेचुरल नींद आदमी की 300 मिनट की होती है, अगर उसका स्लीप साइकिल 100 मिनट का है तो, अगर 120 मिनट का तो 6 घंटा। ब्रह्म कुमारी के बारे में कहा जाता है उनका दिल भी बड़ा होता है, दिन भी बड़ा होता है और दिल भी बड़ा होता है। दिल बड़ा तो आप देख ही रहे हैं, आपको इतने प्यार से बहनें ले जाती हैं, आइए भाई जी चाय पीजिए, खाना खाइए, आइए आपको साइट सीइंग कराती हूं, बहुत सारा आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और दिन भी बड़ा होता है। सुबह 4 बजे घरों में तो आप कहां उठते होंगे, यहां आप 4 बजे उठते हैं, सब फरिश्ते एकदम व्हाइट ड्रेस में आपको चलते दिखाई देंगे, सब योग कक्ष की ओर जा रहे हैं। इनकी देखा देखी कल से आपने भी शुरू कर दिया उठना, और आप भी सुबह सुबह जाते हैं उठते हैं, कितना अच्छा सुखद लगता है। वेक अप अर्ली एंड यू सी देयर इज लाइट अराउंड, नॉट ओनली द आउटसाइड लाइट बट द स्पिरिचुअल लाइट इज आउट। सो बेस्ट समय होता है सुबह अमृत वेले का। अगर हमने स्लीप मैनेजमेंट की बात को समझ लिया तो हम रोज अमृत वेले बड़े आराम से उठ सकेंगे। पहली गुड न्यूज तो सिर्फ ये है। मिलिट्री वालों को जब मैं ये कराता हूं तो बोलता हूं, भाई शिफ्ट ड्यूटी पे किसी को लगाना हो तो डरना नहीं, कोई बीमार नहीं होने वाला। और जो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं उनको सिखाते हैं कि तुम कभी बीमार होगे नहीं, इसलिए स्लीप मैनेजमेंट इसलिए सीख जाओ कि फौज की ड्यूटी भी आपको बीमार नहीं कर सकती। वकीलों को भी कभी कभी रात को बहुत देर तक काम करना पड़ता है, प्रेस वालों को तो रोज ही 12-1 बज जाते हैं। स्लीप साइकिल दिन में कभी भी शुरू किया जा सकता है। और लास्ट बात यह है कि जब हम रात को अगर 10 बजे सोए और 4 बजे सुबह उठे, इसके बीच का टाइम होता है 1 AM प्लस 12 आवर्स, कितना हो जाएगा? सुबह का 1 बजा 12 घंटे जोड़ने से क्या हो जाएगा? दोपहर का 1 बजेगा, और कोई चिंता नहीं करिए, मेरे सवाल बहुत सहज होते हैं। दोपहर को 1 बजे करीब यानी लंच के टाइम में आपको थोड़ी नींद आती है, आनी भी चाहिए, लेकिन हैरत आपको ये होगी कि कभी आप व्रत रख के देखिए, खाने के बाद नींद आना स्वाभाविक है, आपकी आंतरियां जो हैं अधिक खून खींचती हैं इसलिए आपको थोड़ा ड्राउजीनेस फील होती है, लेकिन आप व्रत रखिए, कुछ मत खाइए, फिर भी देखिए क्या होता है, एग्जैक्ट उसी समय आपको नींद आएगी, विच मीन्स इट इज अ साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द ब्रेन एज वेल दैट 12 आवर्स आफ्टर द मिड ऑफ द स्लीप वन फील्स लाइक स्लीपी, इसलिए दोपहर को आधा घंटा करीब 20 मिनट रेस्ट कर लेना चाहिए, अगर दिन में ब्रेक मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता हो तो जब भी शाम को वापस आते हैं 20-25 मिनट रेस्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल इज द नीड ऑफ योर फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल रिक्वायरमेंट, रेस्ट ऑल वट एवर वी स्लीप वी आर वेस्टिंग टाइम, एंड नॉट ओनली वी आर वेस्टिंग टाइम, अगर हम 7-8 घंटे की आदत डाल लें तो जल्दी मरना पड़ेगा, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, सब जीना चाहते हैं, इसलिए स्वस्थ जीना हो तो 5-5.5 घंटे की नींद बहुत अच्छी मानी जाती है। नाउ ये बातें तो हो गई जो नॉर्मल निद्रा के बारे में हम जानते हैं, और डेल्टा वेव्स की बात इसलिए भी थोड़ा जरूरी था कि वहां दिखा हुआ कि डेल्टा वेव्स के टाइम में आपके जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं वो रीजनरेट होते हैं, अगर डेल्टा वेव की नींद ना आए तो ना तो कोई शारीरिक स्वास्थ्य आपका बढ़ता है और ना मानसिक, ना आपको सीखने की कला डेवलप करने की शक्ति पैदा होती है, इसलिए डेल्टा वेव एसेंशियल होती हैं, और चूंकि 4th साइकिल के बाद डेल्टा वेव नहीं है इसलिए सोना निरर्थक कहलाता है, क्योंकि स्लोएस्ट पैटर्न हमें चाहिए ही चाहिए। दादी जानकी की एक विशेषता है, शी इज कॉल्ड द डेल्टा लेडी ऑन द सर्फ्स, डेल्टा लेडीज को इसलिए कहा जाता है कि दादी जानकी किसी भी समय डेल्टा वेव्स पैदा कर सकती हैं, सिर्फ डेल्टा वेव पैदा नहीं करती, डेल्टा रिदम पैदा कर सकती है। डेल्टा रिदम का मतलब होता है अगर ये वाला ऑक्सीपिटल आपका 2 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाला आपका ऑक्सीपिटल भी 2 पर वाइब्रेट कर, ऐसे ऐसा इसे रिदम कहा जाता है, रेजोनेंस कह देते हैं, अगर रेजोनेट करें देन दैट इज कॉल्ड द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर हम सब में से हम योग कर रहे हैं और अल्फा रिदम पैदा करते हैं, ये भी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पहले आई वॉज सर्विंग इन द एयरफोर्स, मुझे निमहान से निमंत्रण आया कि भाई आपकी दादियां तो फटाफट अल्फा डेल्टा रिदम पैदा कर लेती हैं, कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कोई कड़ा मेहनत का काम करता और वो डेल्टा अल्फा रिदम पैदा करके दिखाए। अब मुझे तो मालूम ही था उस डॉक्टर के मन में क्या है, जब मैं जाने लगा तो हमारे रमेश भाई शाह करके एक बड़े भाई हैं जो संस्था का अकाउंटिंग भी संभालते हैं और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको विज्ञान का बहुत शौक है, तो उनको पता लगा कि अशोक जाने वाला है, अरे अशोक ध्यान रखना वो मशीन एकदम सच्ची सच्ची पढ़ लेती है। ये क्या पढ़ लेती है भाई साहब, कि अगर आपके संकल्प सचमुच ही स्थिर होंगे, आपके आपको रिदम आप पैदा कर सकते हैं अल्फा रिदम, तब तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हारे संकल्प ठीक योग में साधे हुए नहीं होंगे तो भैया वो मशीन पढ़ के बता देगी, फिर बड़ा मुश्किल होगा, संस्था की बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, अब 15-16 साल तो हो गए योग करते हुए, ठीक है आपको 50 साल हो गए हैं, मैं तो ये समझता हूं कि योग में पहले 1 मास में ही हम लोग बड़े अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दें, अगर 16 साल में भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कम से कम मुझे पता तो लगने दीजिए कि विज्ञान क्या कहता है, और अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि उसकी मशीन सचमुच अच्छा पढ़ लेती है, पढ़ने दो हमें पढ़ने से क्या डर है। और ये आप निश्चित जानिए कि ये बच्चा भगवान का नाम बदनाम नहीं होने देगा, मुझे पता अच्छा योग क्या होता है, भगवान ने वरदान दिया योग हमेशा अच्छा ही लगता है, और वहां जब पहुंचे तो सचमुच वो एक कमरे में बिठा दिया उन्होंने, उसको डार्क कर दिया, एक यहां पर एक प्रेशर मीटर के लिए पट्टी बांध दी, एक पेट में पट्टी बांध दी कि आपका रेस्पिरेशन रेट लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी लेंगे, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, दो पांव में भी इलेक्ट्रोड लगा दिए, और उसने फिर एक शिव बाबा भी जला दिया, वो वाला जैसे रेड लाइट होती है बिंदु रूप जलाते हैं हम लोग, और फिर एक टेप चालू करने लगा, मैंने तुम कर क्या रहे हो, अरे भाई ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे योग लगाते हैं, उधर में एक प्लास्टिक का लाइट जलता है, इधर में एक म्यूजिक बजता है, उसके बगैर तुम योग कैसे करोगे। मैंने कहा आप समझते हो कि योग म्यूजिक से और वो प्लास्टिक की लाइट से लगेगा तो और कैसे लगेगा। कि मैंने कहा भाई योग तो मन की प्रक्रिया है, मुझे अपने मन से योग लगाना आता है, ये सब बंद कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने जो टेस्ट करने वो कर लीजिए। ही सेज मैं ये सब छोड़ के बाहर जाने वाला हूं और मैं टेलीविजन पर कुछ देखने वाला हूं और मैं बोलने वाला हूं आपको कि स्टार्ट द योग नाउ, और आपको उस समय योग शुरू करना होगा, जब मैं बोलूंगी स्टॉप मेडिटेशन नाउ आपको मेडिटेशन बंद करना होगा। मैंने कहा आप कितना समय चेक करना चाहते हैं कि आप कितना समय योग कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो तपस्वी हूं, तुम साइंटिस्ट हो, तुम तो योग के बारे में कुछ जानते नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट कितना टाइम लेगा, He says 44 minutes. In which 22 minutes meditation and 22 minutes without meditation. I says, done. You go and do what you want. और मुझे आप आराम से छोड़ दीजिए, मैं कुर्सी बैठा था जैसे दादी बैठी हुई है। और ये वरदान हम सभी को मिल जाता है, जब हम योग सीख जाते हैं तो सभी योग कर सकते हैं। और अल्फा डेल्टा पैटर्न स्वाभाविक योग में पैदा होता ही है, अल्फा वेव तो डेफिनेटली पैदा होती है। तो कहता था स्टार्ट मेडिटेशन नाउ, फिर 22 मिनट में आराम से मग्न होकर बैठा था, फिर स्टॉप मेडिटेशन नाउ वो कहता था, और मैं आराम से ऐसे बैठ जाता था, दूसरे कोई संकल्प धीरे धीरे आराम से लाता था। पांच बार उसने चेक किया, फिर छठी बार चेक किया, सिक्स टाइम मैंने कुछ ऐसे योग की डिफरेंट स्टेज ट्राई करने की कोशिश की, मैं देखूं कि इसके कुछ मीटर में आता है कि नहीं आता है। तो छठे दिन वो बड़ा भागा भागा एक्सपेरिमेंट पूरा होते आया, बड़ा खुश होके, क्योंकि पांच दिन मुझे ये चिंता थी कि रमेश भाई ने ऑर्डर दिया बहुत ध्यान रखना है अशोक, वो मीटर पढ़ लेता है। तो मैं एकदम ऐसे कड़ा होकर बिंदु रूप में बैठने की कोशिश करता था। और छठे दिन हमने कहा आज अपने आप आराम से योग करते हैं जिसमें सुख और शांति दोनों का अनुभव हो, जिसे हम फर्शता स्वरूप स्थिति कहते हैं, फिर देखिए इसका मीटर में कोई चेंज आता है कि नहीं। और वो सचमुच आया छठे दिन और आकर के कहता है कांग्रेचुलेशन। मैंने क्यों क्या हुआ? आज तुमने क्या किया भाई? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज बड़ा सहज योग किया जिसमें फर्शता स्वरूप की अनुभूति होती है। पहले पांच दिन मैंने जो योग किया, मैं थोड़ा बिंदु रूप का गहनता से मेहनत करके योग कर रहा था, आज मैंने कोई मेहनत नहीं की, आज मैंने स्वाभाविक फर्शता स्वरूप का योग किया। कहता सर आपका योग सबसे अच्छा योग है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से अल्फा रिदम दे सकता है, इससे अच्छा कोई योग नहीं हो सकता। यानी जो सहज स्थिति हमारी वो सबसे अच्छी, बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैंने कहा इससे क्या फायदा होता है? तो अपने डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि इफ यू कैन जनरेट एन अल्फा रिदम, सपोज आई आस्क ए ग्रुप ऑफ पीपल टू रेज एन अल्फा रिदम, कैन यू डू इट? आई सेड यस, ऑल ऑफ अस कैन डू अल्फा रिदम। जिसको आप अल्फा रिदम कहते हैं हम फर्शता स्वरूप की स्थिति कहते हैं, और वो हमारे लिए सबसे सहज स्थिति होती है, और उसमें सुख और शांति दोनों का इकट्ठा आभास होता है और चेहरा हमारा खुशी से खिला रहता है। कहते वो तो मैं रोज वहां देखता हूं। तो डायरेक्टर ने कहा कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल कैन डू मेडिटेशन विद अल्फा रिदम एंड ए मेंटली रिटार्डेड पर्सन इज मेड टू सिट इन द सेंटर, ही विल गेट हील्ड। यानी को मानसिक तनाव वाला व्यक्ति उन 50 लोगों के बीच में बिठा दिया जाए जो योग की अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उसका तनाव अपने आप गायब हो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया, और थोड़ी देर बाद उसका चेहरा खिलना शुरू हो जाएगा। इतना योग का प्रभाव होता है। अब एक तो है नींद, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो भी 5-6 घंटे करो तब जाकर के आपको उसका असर मिलता है। और आजकल ऐसा हाल हो गया कि इतनी स्ट्रेस है लोगों को कि वो भी नींद के बावजूद भी ना तो नींद अच्छी आती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा तनाव महसूस करते रहते हैं, और दिन में तो बहुत बढ़ने लगता है। और यहां क्या है, जो नींद में भगवान ने हमें विधि दी है, ये जो लो स्लो वे पैटर्न्स जो पैदा होते हैं, वो योग में हम जब चाहें तब पैदा कर सकते हैं, जहां चाहें जिस समय चाहें जितना समय चाहें आप अल्फा डेल्टा पैटर्न पैदा कर सकते हैं। अल्फा रिदम सबसे आसान होती है। इसका मतलब है कि हम आप सभी जो नए नए योगी बने हैं, हम सब अल्फा रिदम पैदा कर सकते हैं। अल्फा रिदम नहीं तो कम से कम अल्फा वेव्स तो पैदा कर ही सकते हैं, जब तक आप बहुत अच्छे फरिश्ता स्वरूप आदि में स्थित होने का अभ्यास करना शुरू कर दें, वो भी एक आध मास में हम लोग सब सहज सीख सकते हैं। और वो जो अल्फा रिदम है या अल्फा स्टेट ऑफ मेडिटेशन है, वो बेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन इसीलिए कहलाती है कि मेडिकली उसको सबसे अच्छा माना गया है। एंड दिस स्लो वेव कैन बी जनरेटेड एट एनी टाइम एनीवेयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एनी टाइम एनीवेयर। ऐसा कौन आपको योग का तरीका सिखाएगा भाई, जो आप जब भी जहां भी जब चाहे अंतर्मुखी चिंतन करिए और अल्फा पैटर्न में चले जाइए। अल्फा पैटर्न का मतलब है ये मीटर आपको बहुत अच्छी आनंदमय स्थिति का आभास कराता हुआ पढ़ के दिखाए। यानी इसकी रीडिंग जो है जब आप योग कर लेते हैं एक बहुत अच्छा टेस्ट है ये। आप योग में नहीं बैठे हैं इसकी आप रीडिंग नापिए, मान लिया आपकी रीडिंग 40 है और आपको 5 मिनट योग करा दिया जाए कमेंट्री से, फिर आप इसको दोबारा नापिए तो 40 से 20 पर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, 25 पर आ जाएगा। यानी तुरंत इसका प्रभाव भी आपको दिखाई देता है। तो जो चीज नींद को और मेंटल एम्पावरमेंट को राज्यों को हम क्यों जोड़ते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं स्लीप में, वो भी मीटर के द्वारा पढ़े जाते हैं, और जो मेडिटेशन करने के बाद हम ईजी चार्ट देखते हैं वो भी मीटर के साथ पढ़ा जाता है। सो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट यू कैन रिलैक्स योर माइंड थ्रू मेडिटेशन एट एनी टाइम एनीवेयर। फिर आंखें खोल के योग करना सिखाते हैं कि मान लिया ऑफिस में आप योग कर रहे हैं, अगर आपको आंखें बंद करके आप कर रहे हैं और झटका खा जाएं तो बेचारा आपका स्टाफ आएगा, अगर साहब को पता नहीं क्या हो गया, दिन में भी झटके खाते रहते। लेकिन आंखें खोल के अगर आप योग कर रहे हैं, वो आएगा, आप उससे नॉर्मल बात करिए। सो नोबडी नोज दैट यू आर मेडिटेटिंग, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन मेडिटेट। मैं कई बार देखता हूं यहां नए नए लोग आते हैं, जब उनको योग सिखाया जाता है तो बहुत से लोग झटका खाने लगते हैं। मैं बहुत सोचा करता था जब तक मैंने ये लेसन नहीं सीखा था, क्योंकि योग का मतलब यह है कि बहिर्मुखी चिंतन को हम अंतर्मुखी चिंतन में चेंज करते हैं। जो बाहर का चिंतन चल रहा है उससे बीटा वेव्स पैदा होते हैं, मोटी मोटी बात है। अब आपको ज्यादा अल्फा थीटा डेल्टा 13 हर्ट्ज 11 हर्ट्ज 12 हर्ट्ज कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुखी चिंतन बीटा वेव्स पैदा करता है, यानी हाई स्पीड वेव्स पैदा करता है और थकान पैदा करता है। अंतर्मुखी चिंतन अल्फा वेव्स पैदा करता है, माना स्लो वे पैटर्न पैदा करता है और एक फ्रेशनेस की फीलिंग जनरेट करता है। अगर हमको योग की अटेंटिवली अवस्थाओं को अनुभव करने का अभ्यास नहीं है, जैसा कि नयों को नहीं होता, तो स्वाभाविक नींद में चला जाता है, जैसा कि नींद में होता ही है। और अगर आंखें बंद करके योग करेंगे तो नेचुरली आप लुढ़क जाएंगे। और अगर आपको योग करने का अभ्यास करा दिया जाता है और आपको योग में कुछ गहन अनुभूतियां करने का लक्ष्य होता है, तब आप आंखें खोल के अटेंटिव होकर योग करेंगे तो आपको आपका सशक्तिकरण होता है। मोटी मोटी दो बातें सशक्तिकरण की मैं आपको बता दूं, आपको उतने में आनंद आ जाएगा। अल्फा रिदम जनरेटेड थ्रू राजयोग मेडिटेशन शेल एटलीस्ट टू थिंग्स यू विल डेफिनेटली गेट, इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। संसार में पैसा कमाने की सबकी इच्छा होती है। आजकल MBA जो बच्चे होते हैं हमारे, वो पढ़ रहे होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में फाइनल ईयर में, और एक आ जाता कंपनी वाला कि भाई मैं 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, मैं तेरे को 8 लाख देता हूं बेटा, तुम सीधा मेरे पास आ जाना। क्यों, क्या होती है इस बच्चे की विशेषता? हिज क्रिएटिविटी इज वेरी गुड, दैट्स वाई ही इज शोइंग बेस्ट रिजल्ट्स, दैट्स वाई ही वॉज चोजन बाय द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड इज प्रूविंग हिज क्रिएटिविटी फॉरवर्ड एंड इज गेटिंग द बेस्ट सैलरी। तो जीवन में सुखी होने के लिए धन भी चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए, आपकी दिमागी शक्ति का बहुत अच्छा विकास होता है। दूसरा क्या चीज चाहिए हमें? स्वास्थ्य चाहिए अच्छा। स्वास्थ्य चाहिए माना स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी बढ़ जाए। इम्यूनिटी पावर अगर आपकी बढ़ जाए तो आपको नेचुरली छोटी मोटी डिजीज का असर नहीं पड़ेगा। आप अमेरिका होकर आ जाएंगे, मैक्सिको होकर आ जाएंगे, आपको वो स्वाइन फ्लू नहीं होगा। जिसकी थोड़ी सी लो होती है ना इम्यूनिटी, उसको जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ लेती है। फ्लू इज अ वेरी कॉमन थिंग, स्वाइन फ्लू पकड़ ले तो फिर तो ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। आजकल उसकी बात चल रही है इसलिए मैंने उसकी बात छेड़ दी। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप स्वस्थ रहेंगे। इट एनहेंसेज योर क्रिएटिविटी, इट इंक्रीज योर इम्यूनिटी। दो चीजें अल्फा रिदम से प्राप्त होती ही हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी रचनात्मक प्रतिभा। तीसरी बात, जिंदगी में और क्या चाहिए? हेल्थ वेल्थ तो दोनों हो गई, तीसरा क्या चाहिए जी? हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। शांति भी चाहिए और खुशी भी चाहिए। प्राइमरली वी नीड मोर ऑफ हैप्पीनेस। जितनी भी फिलोसफीज पढ़ाई जाती हैं, इसे पूछा गया फिलोसफर से, भाई क्यों इतनी सारी फिलोसफीज पढ़ाते हो? ही सेज टू गिव यू हैप्पीनेस। आपका चिंतन ऐसा विकसित कर दिया जाए कि आपके जीवन में खुशी प्राप्त हो जाए। ये एक प्राइमरी पर्पज होता है कोई भी फिलोसफीज को स्टडी करने का। और राजयोग की फिलॉसफी तो बहुत सीधी सादी है, अपने को समझ लेना कि मैं एक आत्मा हूं मन बुद्धि संस्कार सहित। इतना समय तो सबको आ गया, ये तो निश्चित है। मरे हुए जिंदा आदमी में यही फर्क होता है, वो चिंतन करता है, एक्शन करता है, वो नहीं करता। तो हमारी चेतनता हमारी मन बुद्धि की वजह से है। और कॉन्शियसनेस की बेसिक डेफिनेशन होती है, मेडिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज, कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच इज कॉन्शियस ऑफ इट्स सेल्फ एंड इज कॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स। चेतनता उसे कहते हैं जो अवेयरनेस उसकी सराउंडिंग्स के प्रति फुल है, वो देख रहा है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, प्लस कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स सेल्फ। ये टेबल चेतन है, जीवित है, टेबल जीवित है, क्यों नहीं? इस बेचारे को पता ही नहीं कि मैं टेबल हूं। ये कुर्सी जीवित है, इस कुर्सी को नहीं पता है कि मैं कुर्सी हूं। हमें पता है कि यह कुर्सी है, दिस इज माई अवेयरनेस अबाउट माई सराउंडिंग्स। लेकिन पहली परिभाषा जो कॉन्शियसनेस की है, टू बी कॉन्शियस ऑफ इट सेल्फ, मैं चैतन्य हूं, मुझे कैसे पता है कि मैं जब ये जान लेता हूं कि हां मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, हम सबको आभास है ये कि हम सचेत चैतन्य जीवित व्यक्ति हैं। ये पहली कॉन्शियसनेस की परिभाषा है, लेकिन बदनसीबी वही है कि जिंदगी भर साथ रहे आत्मा और शरीर, किंतु रूबरू ना हुए। और अब यहां आकर हम आपको रूबरू करना सिखा देते हैं। और मजे की बात यह है कि आत्मचिंतन करने से ही, जिसे हम अंतर्मुखी चिंतन कहते हैं, अंतर्मुखी चिंतन होता फिर ऊपर प्रभु को याद करना शुरू कर देते हैं। अंतर्मुखी चिंतन होते ही अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। तो आत्मचिंतन अल्फा वेव जनरेट कर देता है। दिन भर तो काम करते रहना है, बीटा वेव्स में तो रहना ही पड़ेगा। बहिर्मुखी चिंतन जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आप आत्मचिंतन करके बहिर्मुखी चिंतन में जाते हैं तो स्पीड हाई नहीं होती है। 20-18-20 हर्ट्ज के अंदर आप काम करते रहते हैं। 30 पर जाते ही आपको थोड़ी स्ट्रेस फील होगी। दिन में कई बार ऐसा हो जाता है, आप एक कप चाय पी लेते हैं, यू टेक ए फैग ऑफ, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट सिट साइलेंटली एंड मेडिटेट फॉर अ मिनट। आत्मचिंतन करना शुरू कीजिए। अब तो स्वचिंतन करना आ गया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने से पूछिए, खुद से बात करना शुरू कर देने को आत्मचिंतन कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लोगों से बात करते हैं तो उसे परचिंतन कहते हैं या बहिर्मुखी चिंतन कहते हैं, और खुद से बात करते हैं तो आत्मचिंतन कहते हैं। खुद से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं, फटाफट क्या जवाब आएगा, कौन है आप? हाँ, सब आत्माएं हैं। पहले कहते थे मैं हमीर सिंह हूं, या मेरा नाम अलाउद्दीन है, या मेरा नाम जगदीर सिंह है, या मेरा नाम अशोक कुमार है, और अभी आप जाकर बोलेंगे मैं आत्मा हूं, सब समझेंगे जरूर ब्रह्मा कुमारी को क्या है। लेकिन डरिएगा नहीं, भले कहे वो, क्या फर्क पड़ने वाला है, होके तो आप गए ही हो और अच्छी बात सीख के जा रहे हो, अपने को पहचान के जा रहे हैं कि बोलिए ना, हाँ मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और आत्मचिंतन के मुझे बहुत फायदे हैं भाई, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मैं खुश रहता हूं, और क्या चाहिए। तो आत्मचिंतन जब भी हम एक दो मिनट करते हैं, हम अल्फा वेव पैटर्न में आ जाते हैं, और अल्फा पैटर्न शुरू होते ही आपको आनंद का आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका कनेक्शन अपने से और अपने पिता से जुड़ता है, इस संसार से आप स्विच ऑफ हो जाते हैं। ध्यान की परिभाषा है कहीं से स्विच ऑफ हो जाना और कहीं स्विच ऑन हो जाना, लेट्स कॉल्ड ध्यान। तो ध्यान करना अगर हम सीख जाते हैं, और एक दो मिनट ध्यान करते समय ना तो हमें सिगरेट की जरूरत पड़ती है फिर, ना एक कप चाय मंगाने की जरूरत पड़ती है। आजकल चाय भी बहुत बढ़िया बढ़िया आती है बाहर से, जब हम बैठे होते हैं कोर्ट में, अगर कोर्ट बहुत स्टैंडर्ड का नहीं है तो फिर चाय भी उसी स्टैंडर्ड की होती है, उसका नुकसान होने का भी चांस रहता है। इसलिए खर्चे से मुक्त, कैंसर से मुक्त, सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो गए, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। बिना कोई पैसा खर्चे अगर आप आनंदमय स्थिति में जा सकते हैं तो और क्या चाहिए। इसलिए मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप जाएं तो सेंटर पे अवश्य जाएं जिस सेंटर से आए हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आपको सुबह शाम योग करने जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ दिन में भी हर 2-3 घंटे में एक दो मिनट के लिए योग अवश्य करें, और जैसे ही खुद से बात करना शुरू करेंगे और खुदा से बात करना शुरू करेंगे, देख तो आपका चेहरा खुशी से खिल जाएगा, तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। आप सभी का जीवन सदा खुशहाल रहे, आप सदा स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
ओम शांति। हमारे विद्वान वक्ता ने क्या फरमाया था कि जिस्म और रूह है साथ जिंदगी भर, तारुफ न हुआ, ऐसे ही कोई शब्द है वो, तारुफ न हुआ। रूबरू तो है, एक वर्ड और है तारुफ न हुआ, ऐसा भी कुछ कहते हैं उसमें। मैंने पढ़ा था जिस्म और रूह साथ रहे जिंदगी भर, तारुफ न हुआ, रूबरू न हुआ, वो भी कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लीप मैनेजमेंट पे आपने अल्फा बीटा गामा डीटा वेव्स के बारे में सुना, यानी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। और मैंने भी मैंने आपका लेक्चर सुना था, उसके बाद में एक दफे मैंने मेरे बच्चे से पूछा आसन से कि जिंदगी में कितना देर सोना चाहिए, तो वो कहता है 5 से 6 घंटे। तो मैंने कहा नहीं, हमारे को तो बताया गया लेटेस्ट जो है वो 1 घंटा 20 मिनट।
पांच से छह घंटा जो सोने का बच्चे ने उत्तर दिया वो बिल्कुल ठीक है। स्लीप साइकिल भले ही डेढ़ घंटा या सौ मिनट का होता है, लेकिन सोना हमको रात में अगर फुल नाइट स्लीप हमें करनी है तो हमें सचमुच पांच घंटे सोना ही चाहिए, तभी आप पूरे रिफ्रेश होते हैं। यस, यू कैन मैनेज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, यू कैन मैनेज विद 3 hours and 20 minutes। अगर आपको ऐसी कोई बात हो, आपको फ्लाइट पकड़नी है, कोई जरूरी काम है, अगर आपको आप 3.5 घंटे भी सोते हैं तो आप आराम से इतने फ्रेश हो जाएंगे कि अपने काम कर सकते हैं और दोपहर को फिर एक साइकिल सो सकते हैं। मीन्स यू कैन शिफ्ट योर साइकिल्स टू योर रिक्वायरमेंट, बट इट इज गुड इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ वी शुड स्लीप 3 cycles, विच मीन्स 5 hours to 6 hours डिपेंडिंग अपॉन द स्लीप साइकिल। तो मैं आपके बेटे के साथ उभरा नहीं।